मेरे प्रिय नौजवान साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 12 अप्रैल 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं दीपक, आप मोकामा बिहार से हैं, राहुल गवरिया, आप जयपुर राजस्थान से हैं, और अनुराधा गुप्ता, आप शाहजहानाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। तो दीपक, राहुल और अनुराधा, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं आज के न्यूज एनालिसिस पर, जो मूलतः कल के रेडियो और दूरदर्शन के न्यूज पर आधारित है। फ्रेंड्स, कल के न्यूज में आपने सुना कि जो सबसे जो प्रोमिनेंट जो खबर थी वह थी कुलभूषण जाधव के द्वारा पाकिस्तान को लेकर, कुलभूषण जाधव को लेकर पाकिस्तान के साथ जो भारत का जो संघर्ष चल रहा है, जो जद्दोजहद चल रही है, उससे जुड़ी हुई खबर थी। आपने दूरदर्शन के न्यूज में भी देखा, पार्लियामेंट की जो एक्टिविटीज रही है वहां भी देखा, और जब आप सुबह के अखबार उलट रहे होंगे तब भी आपको वही प्रोमिनेंसी उस न्यूज की मिलेगी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि लगभग ज्यादातर अखबारों ने इसी इश्यू पर एडिटोरियल कमेंट भी लिखे हैं और आगे चलकर डेफिनेटली इस पर एडिटोरियल आर्टिकल्स भी आएंगे। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि अगर कोई न्यूज इतना महत्वपूर्ण स्थान पा रही है, और केवल ये तो अब राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, धीरे धीरे ये न्यूज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थान पाने लगी है, क्योंकि मामला कुछ ऐसा होता जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि यदि किसी न्यूज के साथ ऐसा हो रहा है तो एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपके लिए उसका महत्व बढ़ जाता है। तो हम ये मान करके तो चलेंगे कि कुलभूषण जाधव का जो मामला है एक तरीके से परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर यह इम्पॉर्टेंट मामला है तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आप किस एंगल को लेकर चलेंगे। तो दोस्तों, इस पर मैं आगे चलकर डिटेल में आज बात करना चाहूंगा। पहले मैं एक और समाचार की चर्चा कर लूं, ताकि जो वक्त बचेगा उसका पूरा इस्तेमाल फिर हम एक ही टॉपिक पर फोकस्ड तरीके से कर सकें। दूसरी जो खबर थी, आपने एड्स रोग निरोधक विधेयक जो पारित किया गया है, नाम में कुछ और ऐड होगा इसमें, विधेयक पारित हो गया है संसद से, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित हो गया है। इससे पहले भी मैंने इसके बारे में चर्चा की थी। मुझे लगता है कभी कभी सिविल सर्विस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और चूंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है तो थोड़ी सी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ बहुत डिटेल में है भी नहीं, क्योंकि जो विधेयक अभी पारित हुआ है उसमें वही ज्यादातर तो आम चीजें हैं जो किसी भी हेल्थ सेक्टर में इम्पॉर्टेंट होती हैं, कि कैसे जो एड्स के पेशेंट हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, अगर उनके साथ कोई भेदभाव कर किया जाता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस विधेयक का, कि यदि कोई भेदभाव उनके साथ करता है तो उसे एक अपराध माना गया है। आपने देखा होगा कि एड्स के बारे में बहुत अलग तरीके की चीजें प्रचलित हो गई हैं, लोगों को लगता है कि अगर जो एड्स का पेशेंट है उससे हमने हाथ मिला लिया तो हमको हो जाएगा, स्पर्श कर लिया तो हो जाएगा, तो इस तरह के बहुत से मिथक फैले हुए हैं और प्रचार प्रसार के जरिए भी बताने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन चूंकि वो शुरुआत में 80 के आसपास जब ये इस बीमारी की शुरुआत हुई थी, 83 के आसपास देखेंगे कि इसकी शुरुआत हुई थी, तब से पता नहीं कैसे ये बात शुरू हो गई, फैल गई, और समाज की चेतना पर ये इतनी बैठ गई है कि इससे आसानी से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो सरकार को उसके लिए फिर एक विधेयक ला करके इसको अपराध घोषित करना पड़ा है। तो ये इसके सबसे बड़े केंद्र में है कि इसके प्रति भेदभाव को अपराध माना जाए। और दूसरा, जो एड्स का पेशेंट है उसकी जो प्राइवेसी है, जो गोपनीयता है, उसको भी बनाए रखा जाए। गोपनीयता और अपराध आप इन दोनों को देखेंगे कि लगभग लगभग एक जैसा है, क्योंकि यदि समाज भेदभाव नहीं करे तो मुझे ये बताने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि हाँ मैं एड का पेशेंट हूं। आखिर में हम जो दूसरे बीमारी जो हमको होती है तो पब्लिकली लोग जानते ही हैं कि हाँ इनको ये बीमारी, हम नहीं कहते कि मुझे ये बीमारी नहीं है। तो भेदभाव जब होता है तभी उसको छुपाने की कोशिश होती है। तो प्राइवेसी के भी अधिकार दे दिए गए हैं और साथ ही साथ भेदभाव के विरुद्ध भी कदम उठाए गए हैं। तो ये इसके दो मेजर पॉइंट हैं। इसको आप कहीं भी सोशल एंगल में ले सकते हैं, एक तरह से समानता के अधिकार के तहत ले सकते हैं, मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स के तहत भी इसको ले सकते हैं, हेल्थ सेक्टर का पार्ट तो ये है ही, तो ऐसे में भी ये इश्यू काम आ सकता है, ये जो टॉपिक है काम आ सकता है। और कई जगह आप जैसा भी अवसर पाएं लगता है कि ये उपयोगी है, तो केवल इन दो पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आप अपने जो आर्टिकल हैं, जो अपने आंसर हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, जो सिविल सर्विस की बहुत बड़ी जरूरत होती है। सिविल सर्विस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही होती है फ्रेंड्स कि आप उस इश्यू के बारे में कितने अपडेटेड हैं। आपने देखा होगा, आप सिलेबस उठा करके देख लीजिए तो उसमें सतर्कता शब्द इस्तेमाल किया गया है कि इसकी जांच की जाती है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क का मतलब यहां अलर्टनेस से ही है कि आपको कितनी नवीनतम जानकारियां किसी भी इश्यू के बारे में हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट खबरें थी फ्रेंड्स। एक बात मैं यहां थोड़ा सा और आपसे करना चाहूंगा और वो ये कि हम चंपारण ने सत्याग्रह की बात कर रहे थे परसों, न्यूज में भी ये बात थी, रेडियो दूरदर्शन के न्यूज पर भी ये बात थी। चंपारण ने सत्याग्रह मूलतः भी 15 अप्रैल को गांधी जी मोतिहारी, बिहार का क्षेत्र चंपारण का क्षेत्र है, वहां पहुंचे थे और वहां से उन्होंने अपने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। 100 साल पूरे हो रहे हैं। इसके बारे में मैंने थोड़ी सी आपको जानकारी भी इससे पहले दे दी है। यहां मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, खासकर कल मैं एनडीटीवी देख रहा था तो उसमें रवीश सत्याग्रह के बारे में ही, चंपारण सत्याग्रह के बारे में ही कुछ बता रहे थे और उन्होंने इस बातचीत करने के लिए गोपाल कृष्ण गांधी जी को बुलाया था। गोपाल कृष्ण गांधी जो हैं महात्मा गांधी जी के पोते हैं और बेसिकली वाईएस ऑफिसर रहे हैं तमिलनाडु कैडर के, और वेंकट रमन जी जब उपराष्ट्रपति थे तब उपराष्ट्रपति के सचिव रहे, जब वेंकट रमन जी राष्ट्रपति बन गए तब भी उनके वो सचिव रहे थे, इसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया था सर्विस से। फिर दक्षिण अफ्रीका जब आजाद हुआ तो उन्हें दक्षिण अफ्रीका भारत का उच्चायुक्त बनाकर भेजा गया था, इसके बाद फिर वेस्ट बंगाल वगैरह के गवर्नर और दूसरे पदों पर भी रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि चूंकि वो उपराष्ट्रपति भवन में रहे थे तो मुझे उनसे मिलने का मौका भी मिला है, और बहुत ही एक्सीलेंट पर्सन है, ऑनेस्टी की तो कोई सीमा ही नहीं है। आप उनकी ऑनेस्टी को चाहे तो अव्यवहारिकता की सीमा तक की ईमानदारी कह सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही लर्नेड पर्सन है, बहुत अच्छे राइटर भी है। तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें गांधी जी के बारे में, सत्याग्रह के बारे में और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताई थी। आपको ध्यान होगा कि परसों मैंने आपको कहा था कि जो सत्याग्रह पर अगर गांधी जी के प्रश्न पूछा जाएगा तो स्ट्रेट इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होंगे जिनके उत्तर आपको इतिहास की किताब में मिल जाएंगे। उत्तर तो इतिहास की किताब में है लेकिन वो छिपे हुए हैं, वो बिटवीन द लाइन्स हैं। जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद अगर रस निकालने की क्षमता होगी तब आप उन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे, स्ट्रेट तरीके से उनके आंसर नहीं होंगे। कल खासकर जो गोपाल गांधी जी जिस तरह से बता रहे थे, गोपाल कृष्ण गांधी जी, तो मुझे लगा कि वो बहुत अच्छा हिस्सा था। तो खासकर मुझे सूचना आपको ये देनी है इसके माध्यम से कि अगर आपको एनडीटीवी का वो प्रोग्राम देखने को मिल जाए यूट्यूब और कहां अवेलेबल होता है तो आप उसे एक बार जरूर देखें। और खासकर रवीश जी ने जो कुछ भी अपने वक्तव्य में कहा था वो पूरा का पूरा उनका वक्तव्य एनडीटीवी के ब्लॉग पर अवेलेबल है, आज वो अवेलेबल है, उन्होंने ब्लॉग पर डाल दिया है, मैंने देखा है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उस ब्लॉग को पढ़ें, उस ब्लॉग को इस रूप में मत पढ़ें कि क्या क्या घटनाएं हुई थी, है ना, उन घटनाओं की इम्पोर्टेंस को पढ़ें कि देखिए कि वहां क्या क्या गांधी जी ने इनोवेशन मतलब बिल्कुल नए तरीके से चीजों को किया। उसमें कुछ ऐसे प्रसंग हैं, ऐसी बातें उठाई गई हैं जो एक तरीके से उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता, उनके काम करने की प्रणाली, खासकर आंदोलन के प्रति उनका जो दृष्टिकोण था, किस तरह से उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन के चरित्र को बदला, ये सारी चीजें वहां दिखाई देंगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस ब्लॉग को एक बार जरूर पढ़ लें और जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी उन्हें नोट भी कर लें। तो फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं कुलभूषण जाधव जी के इश्यू पर। دیکھیں یہ ایک معاملہ ہے اور اس معاملے کو لے کر سیدھے سیدھے کوشچنس نہیں بنیں گے. ہاں اس معاملے سے کیا سمسیائیں کھڑی ہو رہی ہیں, کس طرح کی استھتیاں بن رہی ہیں, ان استھتیوں کو لے کر کے ضرور پرشن پوچھے جا سکتے ہیں. فرینڈس اتنا تو اب آپ کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کہ جو ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہمارے ریلیشنز کیسے ہیں. اسی پر سب سے زیادہ پرشن پوچھے جاتے ہیں, یا تو اس پر پوچھے جاتے ہیں یا پھر جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن, ورلڈ بینک اور گلوبلائزیشن ان سے ریلیٹڈ کوشچنز ہوتے ہیں, یا تو ہمارے پڑوس یا پھر پوری دنیا, اور دنیا ایز اے ہول ناٹ ایز انڈیویژل کنٹری. اس سے پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ مالدیپ پر پرشن پوچھا گیا ہے, شری لنکا پر پرشن پوچھا گیا ہے, ڈھاکہ پر پرشن پوچھا گیا ہے, چین پر تو آپ اٹھا کر کے دیکھیے تو لگ بھگ ہر سال ایک پرشن پوچھا گیا ہے, چاہے وہ دکشن چین ساگر کو ہی آدھار بنا کر کیوں نہ پوچھا گیا ہو, چین پر پرشن پوچھا جاتا ہے. پاکستان پر ابھی 2016 میں ایک پرشن پوچھا گیا ہے, اور وہ خاص کر جب پاکستان سے پرشن پوچھا گیا تو سیما پار آتنکواد کو لے کر ہے, اور خاص کر سارک کے بھوشیہ کو لے کر کے تھا. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ پرشن پڑھ کر سناتا ہوں جو 2016 کے مینس کے جنرل اسٹڈیز کے سیکنڈ پیپر میں پوچھا گیا تھا. آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہے. پرشن ہے فرینڈز, بھارت میں بڑھتے ہوئے سیما پاری آتنکی حملے اور انیک سدسیہ راجیوں کے آنترک معاملوں میں پاکستان دوارا بڑھتا ہوا ہستکشیپ سارک کے بھوشیہ کے لیے سہایک نہیں ہے, اپیکت ادارنوں کے ساتھ اسپشٹ کیجیے. میں انگلش میں پڑھ دیتا ہوں. انکریزنگ کراس بارڈر ٹیررسٹ اٹیک ان انڈیا اینڈ گروئنگ انٹرفیئرنس ان دا انٹرنل افیئرس آف سیورل ممبر اسٹیٹس بائی پاکستان آر ناٹ کنڈیوسو فار دا فیوچر آف سارک, ایکسپلین وتھ سوٹیبل ایگزامپل. اب آپ دیکھیں کہ یہ آتنکواد کو لے کر کے ہے جو پاکستان لگاتار کر رہا ہے, پورے چھیتر کے لیے جو خطرہ پیدا ہو گیا ہے. اس کے بعد سارک کے بھوشیہ کو لے کر کے پرشن پوچھا گیا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ اپیکت ادارن, یعنی کہ اکثر میں نے دیکھا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز پر جو کوشچنز پوچھے جاتے ہیں اور بھی جو دوسرے کوشچنز ہیں اس میں اپیکت ادارن شبدوں کا پریوگ کیا جاتا ہے. उपयुक्त उदाहरण क्या है? देखिए उपयुक्त उदाहरण का मतलब होता है, वैसे तो ठीक है जो उदाहरण आपके तर्क को सिद्ध करते हो, जिनको आधार बनाकर आप अपनी बात कहने जा रहे हैं कह रहे हैं वो उपयुक्त उदाहरण है. लेकिन इसमें एक छुपा हुआ तथ्य भी है. छुपा हुआ तथ्य है रिसेंट करेंट, कि जो बिल्कुल अभी का जो उदाहरण है उसे आप लेकर चले, क्योंकि ये करेंट अफेयर्स का पेपर है. ठीक है, वो जनरल नॉलेज का ही पेपर है लेकिन ये करेंट से जुड़ा हुआ है. यानी कि करेंट से जुड़ा हुआ का मतलब है कि इसकी तैयारी आपको न्यूज और न्यूज पेपर से होनी है, 10 साल पुराने किसी इंटरनेशनल रिलेशंस की किताब से नहीं होनी है. अगर 10 साल पुराना आप उदाहरण देंगे तो वो एक तरीके से बेकार हो जाएगा. यहां उदाहरण तो सही है लेकिन यहां काम नहीं करेगा. तो दोस्तों पहली बात तो यह है कि जो कुलभूषण जाधव वाला जो मामला है ये एक बहुत उपयुक्त उदाहरण है भारत पाकिस्तान के तनाव میں جو ایک دم کہہ لیجیے کہ جو زبردست کھینچاؤ آ گیا ہے, جو میں وردھی ہوئی ہے, اس کا ایک ادہرن ہے. دوسرا ادہرن آپ پائیں گے کہ پاکستان جو ایک اسٹیپ یہ اٹھا رہا ہے اس کے پیچھے آخر میں کارن کیا ہے. تو وہاں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو بھارت پاکستان چین افغانستان کا یہ جو پورا کا پورا دکشن پوروی ایشیا کا جو حصہ ادھر دکشن چین ساگر پرشانت مہاساگر تک لے لیجیے, حالانکہ میں نے یہ جو بات کہی ہے آپ کو تھوڑی سی اٹپٹی سی لگی ہوگی لیکن اگر آپ ان چیزوں کو نقشے میں دیکھیں گے تو آپ کے دماغ میں ترنت کلیئر ہو جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کیونکہ سب اسی کے آس پاس کے چھیتر ہیں. اس پورے کے پورے چھیتر میں ایک بہت تناؤ کی استھتی بنی ہوئی ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ شکتی سنتولن کی درشٹی سے اگر دیکھیں, ہم جسے بیلنس آف پاور کہتے ہیں جو ڈپلومیسی میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ سیدھے سیدھے پائیں گے کہ دو پکش دکھائی دے رہے ہیں, ایک میں تو بھارت ہے اور دوسرے میں چائنا ہے. چائنا اس پورے کے پورے چھیتر میں اپنی شکتی بڑھانا چاہ رہا ہے. شکتی بڑھانے کے لیے ہی میں نے کل بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ ریلیشن ٹھیک کر رہا ہے, نیپال کے ساتھ بھی بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے, شری لنکا کے ساتھ بھی کر رہا ہے, لگاتار وہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے, اور پاکستان کے ساتھ تو اس نے بہت ہی زیادہ دوستانہ سمبندھ استھاپت کر ہی لیے ہیں. اس کے پیچھے ریزن ہے کہ پاکستان اس کو اس لیے سوٹ کرتا ہے کیونکہ پاکستان شروع سے ہی بھارت کا زبردست ویروھی رہا ہے. انتراشٹری منچوں پر دیکھ لیجیے, یو این او فورم پر دیکھ لیجیے, جہاں بھی پاکستان کو موقع ملتا ہے وہ بھارت کا ویروھ کرتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس نے اپنی ڈپلومیسی کا یہ مول آدھار بنا دیا ہے. तो इस तरीके से पूरी तरह से शक्ति असंतुलन की स्थिति बनती जा रही है और यही भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरह से वो अपने बांग्लादेश के साथ के संबंधों को बेहतर बनाए, नेपाल के साथ बेहतर बनाए, श्रीलंका के साथ बेहतर बनाए। इधर मालदीव में भी चीन का बहुत जबरदस्त घुसपैठ शुरू हो गई है। घुसपैठ तो नहीं कहना चाहिए, ठीक है, वो अपने अपने ढंग से संबंध बना रहा है, कौन किस तरह की डिप्लोमेसी को लेकर के चलता है। तो भारत के लिए ये बहुत जरूरी है कि किस तरह से वो अपने शक्ति को अपने पक्ष में संतुलित रख पाता है। और यहां फिर जो दूसरे राष्ट्र हैं वो अपनी घुसपैठ करनी शुरू कर देते हैं, अपने हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं, वक्तव्य देना शुरू कर देते हैं। अक्सर ये माना जा रहा है, कुछ डिप्लोमेट्स ये कह रहे हैं कि अभी जो दलाई लामा जी ने जो अरुणाचल में अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर गए थे, तो आपको मालूम है कि चीन उसे बहुत बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। तो चीन ने पाकिस्तान को है मतलब उकसाया है कि कुछ ऐसा करो, तो कुछ लोग कहते हैं कि उसका भी एक कदम हो सकता है, उसी का एक परिणाम हो सकता है कि ठीक है कुछ ऐसा किया जाए। तो दोस्तों ये तो एक सिनेरियो है, जो अब दूसरा जो मैंने पॉइंट बताया शक्ति संतुलन के सिद्धांत के आधार पर। अब तीसरा जो एंगल होगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने का, वह एंगल हो सकता है कि किस तरीके से जो पाकिस्तान है वो एक इंटरनेशनल लॉ है कह लीजिए, या एक जस्टिस है, चाहे वो मानवाधिकार की जज का जस्टिस कह लीजिए या मानवता का जस्टिस कह लीजिए, उसकी भी अनदेखी कर रहा है। फिर से यहां मैं आपको स्पेशली एक पॉइंट देना चाहूंगा और आपको चाहिए कि आप इसे नोट कर लें, और जब भी इस तरह का कोई प्रश्न आए तो यदि आप उसमें इसे डाल सकेंगे तो आपका जो उत्तर है वो काफी वजनी बन जाएगा, फुल ऑफ कंटेंट बन जाएगा। और वह है कि 1963 में एक संधि हुई, एक समझौता हुआ है आप कह लीजिए, जिसे कहते हैं वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशन, वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशन। ये एक समझौता दुनिया के देशों के बीच में हुआ है, जिसमें अभी लगभग 180 देश इसमें हैं। बेसिकली ये जो समझौता, देखिए वियना कन्वेंशन मतलब वियना में ये सम्मेलन हुआ था और मतलब साइन हुए थे इस पर। काउंसलर शब्द है इसमें, काउंसलर रिलेशन, यह हमें थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि एम्बेसडर और काउंसलर या एम्बेसी और काउंसलेट उसमें क्या फर्क है। थोड़ा सा ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि न्यूज में भी आपने ये सुना है कि हमारे विदेश मंत्री ने पार्लियामेंट में ये कहा कि हमारे काउंसलर ने बार बार कोशिश की कि हमको कुलभूषण जी से मिलने दिया जाए। कई बार उन्होंने ये बात कही, शायद 15-16 बार, 10-12 बार ये बात कही गई, लेकिन पाकिस्तान ने उस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया, मिलने ही नहीं दिया गया है। तो ये बेसिकली काउंसलर क्या है दोस्तों, सच पूछे तो एम्बेसी और काउंसलर में दोनों में अंतर यह है कि एम्बेसी तो डिप्लोमेटिक मामलों को सारे के सारे देखते हैं, वहां एम्बेसडर होते हैं, हाई कमिश्नर होते हैं हमारे। जो काउंसलर्स होते हैं, काउंसलेट जनरल कहलाते हैं, जो हमारा ऑफिस होता है, दुनिया का कोई भी काउंसलेट का ऑफिस हो काउंसलर का, उसके दो मेन काम होते हैं। पहला तो यह होता है कि जहां भी वह है उस देश में अगर कोई उनके अपने देश का नागरिक है, जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान में हमारा काउंसलेट जनरल है, तो जो हमारे काउंसलेट जनरल है पाकिस्तान में जो भारतीय रह रहे होंगे या जो भारतीय पाकिस्तान जाएंगे उनके हितों की रक्षा करना, उनको अगर कोई समस्या है तो उनकी मदद करना। दूसरा इनका काम होता है कि दोनों देशों के बीच में जो वाणिज्यिक और आर्थिक संबंध है, कमर्शियल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, उसको बढ़ाना, उस रिलेशनशिप को बढ़ाना, ये दो मेजर इनके काम होते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी समानता यह भी है कि जो डिप्लोमेट है वो काउंसलर नहीं है और जो काउंसलेट है वो डिप्लोमेट नहीं है। मतलब अगर जो काउंसलेट है वो डिप्लोमेट नहीं है, और डिप्लोमेट जो मैं यहां कह रहा हूं फ्रेंड्स, उसका मतलब है कि जो डिप्लोमेट होते हैं उनको बहुत प्रिविलेज मिलता है। जैसे मान लीजिए कि भारत का कोई के हाई कमिश्नर पाकिस्तान में है, तो ये मानकर के चलिए कि वो पाकिस्तान में हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो हमारे राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वो हमारे देश के वहां प्रथम नागरिक हैं, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, तो उनको कुछ विशेष किस्म की प्रिविलेजेस मिलती हैं। जैसे कि वो एम्बेसी है, एम्बेसी में कोई उस देश का व्यक्ति बिना उनकी अनुमति के अंदर नहीं जा सकता, हमारी एम्बेसी सुरक्षित रहे इसकी वो गारंटी लेंगे, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करेंगे, तो इस तरह के प्रिविलेजेस होते हैं। ऐसा नहीं कि वो जा रहे हैं और आप उनके सिक्योरिटी चेक करने लगेंगे, है ना, उनकी गाड़ी के नंबर कुछ अलग तरीके के होते हैं, कलर अलग तरीके के होते हैं, कि ऐसा नहीं कि कोई भी पुलिस वाला जब भी चाहे उन्हें रोक ले, तो ये सारे के सारे प्रिविलेजेस होते हैं। तो जो डिप्लोमेट को प्रिविलेजेस होते हैं, वही काउंसलर को भी प्रिविलेजेस होते हैं। लेकिन मूलतः ये मान करके चलिए कि ये एक वाणिज्यिक कामों को ज्यादा देखते हैं काउंसलेट। अब आप देखिए कि जो वियना कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन का क्या पॉइंट है, मैं वो आपको क्लियर कर दूं कि उसका जो आर्टिकल 36 है, उस आर्टिकल 36 में ये लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जैसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, कुलभूषण गिरफ्तार कर लिए गए, ठीक है चलिए, अब उसके ऊपर विवाद है, हम उस पर नहीं जाते, हम केवल एग्जामिनेशन की दृष्टि से देख रहे हैं कि अगर वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और कोई देश ये कहता है कि ये हमारे यहां का नागरिक है, या वो कहते हैं कि मैं वहां का नागरिक हूं, तो उसकी सूचना बकायदे काउंसलेट जन को दी जानी चाहिए और फिर काउंसलेट उसके आधार पर फिर उनको बकायदे वकील मुहैया कराया जाएगा, वो उनका केस लड़ेगा, वो देश को का देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी होगी, उस नागरिक के प्रति जिम्मेदारी होगी, तो स्थितियां बिल्कुल बदल जाती हैं। ये अनुच्छेद 36 में मेंशन किया हुआ है, तो आपको ये अनुच्छेद 36 याद रखना है, बस केवल इतना बार थोड़ा सा रेफरेंस आप दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। तो पाकिस्तान इस मामले में एक तरीके से जो वियना कन्वेंशन है उस तक को इग्नोर कर रहा, उस तक को उसने किनारे कर दिया है। तो मित्रों, ये एक दो पॉइंट्स थे जो मुझे आपको क्लियर करने थे। पहला, एम्बेसी और काउंसिल ऑफिस ऑफ द काउंसलर का अंतर आपको पता लग जाए, और दूसरा, वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशनशिप 1963 क्या है, और उसके उस आर्टिकल के बारे में बताना था जो यहां पर लागू होता है। तो मित्रों, अब आज के न्यूज एनालिसिस में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसमें इकोनॉमिक टाइम्स की एक बहुत अच्छी क्लिपिंग्स है फ्रेंड्स, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस पर है, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर पा रहा हूं, उसे आप लोग जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी क्लिपिंग्स है। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, ओम खुशबू रघुवंशी गुना मध्य प्रदेश से, हर्षिता गुप्ता उन्नाव उत्तर प्रदेश से, अनु गुप्ता, शशांक निगम इलाहाबाद से, राहुल तिवारी, खेमाराम पंवार फलोदी राजस्थान से, अभिषेक गुप्ता, सईद अनवर खान, अमनदीप सिंह, प्रताप लोहिया बाड़मेर राजस्थान से, इमरान हुसैन मोतिहारी बिहार से, कृष्ण राय श्रीगंगानगर राजस्थान से, और सपना पांडे सूरजपुर छत्तीसगढ़ से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।